श्री साई राम साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। 20 अक्टूबर 1940 की बात है। एक जवान लड़का, कोई उम्र होगी 13-14 साल की, विद्यालय जाने की तैयारी हो रही थी, अचानक अपने पुस्तकों को एक जगह रख दिया, बोले मैं जा रहा हूं, मुझे मेरे भक्त बुला रहे हैं, मुझे बहुत काम करना है, मैं आपका नहीं हूं, आप मेरे नहीं हैं। घर वाले अचरज में पड़ गए, क्या हो गया बालक को, विद्यालय जाने के बजाय कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन उसने अपनी पुस्तकों को वहां रखकर एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया। वहां बैठकर भजन गाने लग गया। वो भजन जो उन्होंने स्वयं लिखा, स्वयं उसकी धुन बनाई, स्वयं उसको गाया, वो और कोई नहीं, भगवान श्री सत्य साई बाबा थे।
मानस भज रे गुरु चरणम, दोस्तर भव सागर तरणम। मानस भज रे गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरणम।
मानस भज रे गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरणम।
गुरु महाराज गुरु जय जय,
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 साईनाथ सा गुरु जय जय,
साईनाथ सा गुरु जय जय,
साईनाथ सा गुरु जय जय। शिवाय शिवाय नमः।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुण शिवो,
अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुण शिवो,
अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुण शिवो,
अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुण शिवो।
ओंकारम बाबा, ओंकारम बाबा, ओंकारम बाबा, ओम नमो बाबा। मानस भजरे गुरु चरणम, दुष्ट ಉತ್ತರ ಭವ ಸಾಗರ ತರಣ
बाबा एक वृक्ष के नीचे बैठ के ये भजन गा रहे थे। ये उनका पहला भजन था जो उन्होंने स्वयं लिखा, उसकी धुन बनाई और उसको गाया। वहां पर लोगों का तांता लग गया। कोई आरती की थाली लेके आ रहा था, कोई फल फूल ला रहा था। घर वालों ने पूछा, भाई तुम कौन हो, ये क्या नाटक लगा रखे है? कहते हैं कि सत्य साईं बाबा जी उस समय 13-14 वर्ष के थे। उन्होंने चमेली के फूलों को उठाकर आसमान की ओर फेंका। जब वे फूल धरती पर गिरे तो तेलुगु भाषा में लिखा गया साईं बाबा। एक प्रकार से संदेश दिया, एक प्रकार से बताया मैं साईं बाबा हूं। जो पहले शिरडी में आए थे अब पृथ्वी में आए हैं। कहते हैं बाबा के तीन अवतार होंगे, शिरडी साई, सत्य साई, प्रेमा साई। लेकिन जो उन्होंने पहला भजन गाया, मनस भजोरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर चरणम, वह हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। मनस का अर्थ है नहीं मनुष्य नहीं, मनस का अर्थ है मन। हे मन, गुरु के चरणों को तू भज ले, वह तुझे भवसागर से पार करा देंगे। विचार कीजिएगा, जीवन की सारी समस्याएं हमारी जो है, अधिकतर समस्याएं मन को लेकर हैं। वैसे तो कहते हैं हमारे 6 आंतरिक शत्रु माने जाते हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, और मन इनके अधीन आ जाता है। ये वासनाएं हैं जो जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ चलती आ रही हैं, हमारे को संसार में बांधे रखती हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देती है आध्यात्मिक रास्ते पे। हे मनुष्य, तो गुरु के चरणों को पकड़ ले, वे तेरे को पार लगा देंगे। अगर मन सही रास्ते पे चले, अगर मन गुरु की बातों को माने, अगर मन परमात्मा के नाम को बारंबार जपता रहे, तो अपने भीतर बसे हुए ये आंतरिक शत्रु काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, इन पर विजय पा सकता है। विचार कीजिएगा, आप विचार कीजिएगा, गुरु का अर्थ क्या, गुरु जो आपको अंधकार से हटा के प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु बोला गया। और ध्यान दीजिएगा, विचार भी कीजिएगा, हमारे जितने शास्त्र हैं, हमारे जितने ग्रंथ हैं, वे हमारे को किसी न किसी तरीके से एक ही आदेश देते हैं, एक ही संदेश देते हैं, एक ही बात बताते हैं कि हमें अपने आप पर विजय पानी है अगर हम परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं। तो भगवान राम ने रावण को मारा, वो दिन को कहा गया दशहरा, जिसने दश को हर लिया। अब दश कौन है? लंकापति रावण, जिसके दस सर हैं, दशानन रावण। आप जानते हैं रावण बड़ा हैंडसम था, गुड लुकिंग था, बहुत सुंदर था, उसका शरीर बलशाली था, उसने अपनी भुजाओं में हिमालय को उठा लिया, पर्वत को उठा लिया, भगवान शंकर को प्रसन्न कर दिया। एक तो बलशाली, दूसरा राजा, तीसरा ऐसी भक्ति के उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया, चौथा ज्ञानवान। दस स्तर थे या नहीं थे, लेकिन कहने का तात्पर्य है चार वेद छह शास्त्रों का ज्ञाता रावण, पंडित था रावण, ब्राह्मण था रावण, दशानन रावण। दस स्तर का मतलब है इतनी बुद्धि थी, इतना ज्ञान था। धन की कमी थी नहीं, लंका भी सोने की थी उसकी। अरे भाई, हमारे घर में सोने की कुंडियां नहीं होती हैं, सोने के चम्मच नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत सोना होता है, खासकर माताओं के पास, बहनों के पास, या पुरुषों के पास अंगूठी के रूप में या चेन के रूप में। थोड़ा ज्यादा होगा तो बैंक के लॉकर में रख के आ जाएंगे। लेकिन दशानन रावण की तो लंका सोने की थी। जिसके देवता भी थर थर कांपते थे, इतना बलशाली था रावण। अब विचार करें, हैंडसम, गुड लुकिंग, सुंदर, बलशाली, अमीर, धनवान, राजा, भक्ति से परिपूर्ण, सारे गुण उसके अंदर थे, फिर भी एक मानव से हार गया जो वनवासी था, भगवान राम। विचार कीजिएगा, रावण के दस सर, जरा उसकी व्याख्या कर दी जाए। काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर मन बुद्धि चित अहंकार, ये उनके दस सर कहे जा सकते हैं। दस सर का मतलब हो गया 20 आंखें। रावण का ध्यान कहां था? माता सीता की ओर। रावण का ध्यान माता सीता की ओर नहीं, एक पराई स्त्री की ओर था। 20 की 20 आंखें केवल एक पराई स्त्री पर स्त्री पर केंद्रित थी। वो आदत, वो उसकी भावना, वैसा उसका संस्कार उसको ले डूबा। तो शास्त्र हमें क्या बता रहे हैं कि आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, कंट्रोल योर सेंसेस, अपनी वासनाओं का दमन कर दें अगर निकाल नहीं सकते तो। नहीं तो अंत वैसा ही होगा। विचार कीजिएगा। एक गुरु है जो आपको सही रास्ते पे ले जा सकता है, गुरु आपको दिशा दे सकता है, आपको रास्ता दिखला सकता है, आपको डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास तो आपको ही करना होगा। मन से भजोरे गुरु चरणम, हे मन गुरु के चरणों को भजले, गुरु के चरण की व्याख्या की जाए। हम घर में पादुकाएं रखते हैं, गुरु के चरणों की छाप रखते हैं, हम ये मानते हैं कि यहाँ पर गुरु जी इस समय हैं, जिनकी पादुकाएं हैं वो यहाँ पर हैं, परमात्मा यहाँ पर हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उसमें फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, वंदना करते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। पादुकाओं की पूजा, चरणों की पूजा हमको ये बताता है भैया गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलो, परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे चलो। हर की पौड़ी में जाएंगे वहां पर आपके भगवान के पांव का निशान मिलेंगे, हरिद्वार में कितने मंदिर ऐसे हैं भारत में जहां पर आप देखेंगे चरणों का निशान है, कहते हैं भगवान कृष्ण के चरण है, भगवान राम के चरण है, भगवान विष्णु के चरण है, भगवान शंकर के चरण है। आप शिरडी बाबा मंदिर में जाइए, वहां पे चरण लगे हुए हैं शिरडी बाबा के, आप माथा टेकते हैं, अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन शिरडी बाबा ने एक संदेश क्या दिया, विचार कीजिएगा। सबूरी पेशेंस श्रद्धा, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा क्या है, फेथ, फेथ क्या, लव फॉर गॉड, परमात्मा के लिए प्रेम, परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा पे समर्पण। आप गुरु पे श्रद्धा रखते क्या मतलब हुआ कि ये गुरु मुझे सही रास्ते पे लेके जाएंगे, देन यू हैव टू गिव योरसेल्फ इन टोटैलिटी। आपको सरेंडर करना होगा, आपको अपने आप को समर्पित करना होगा, आपको अर्पित करना होगा, अपनी वासनाओं को अर्पित करना होगा। मनस भजोरे गुरु शरणम, गुरु के चरण पे, गुरु के रास्ते पे, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलने से भव सागर को पार कर सकते हैं। रामायण का प्रसंग याद आ गया, एक भगवान राम माता जानकी लक्ष्मण को एक नदी पार करनी थी, वहां पे एक नैया थी, नैया को चलाने वाला नाविक केवट था। भगवान राम केवट से बोले, भाई केवट हमें नदी पार करा दो। केवट बोला, भाई नदी तो मैं पार करा दूं, लेकिन आप वही राम है ना? हाँ मैं पहचान गया, एक शर्त है, पहले मैं आपका चरण धोऊंगा, शरणागत ग्रहण करूंगा, उसके बाद आपको पर उतारूंगा। राम जी मान गए। पहले पूछा क्या बात है, ऐसी क्या बात है भाई? बोले मैंने सुना है, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पांव, तोहे कैसे बिठाऊं मोहे नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पांव, तो है कैसे बिठाऊं मोहे नाव में, तूने पत्थर की बना दी है नारी। भगवान राम ने एक पत्थर से अपने चरण को छुआ, वो नारी बन गई माता अहिल्या। वहां संकेत कर रहे हैं केवट जी, तूने पत्थर की बना दी है नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। कहते हैं आपने पत्थर की नारी बना दी, मेरी तो लकड़ी की छोटी सी नाव है, मेरी रही इसी से मेरी जीविका चलती है, पहले मैं आपको चरणों को धो के उसके बाद आपको लेके जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव भी स्त्री बन जाए, कुछ और बन जाए। केवट ने भगवान राम को नदी पार करा दी, भगवान राम ने माता सीता को इशारा किया, भैया इसको मेहनताना दो, कुछ तो दो। माता सीता कहते हैं, उन्होंने एक अंगूठी निकाली देने लगी, केवट ने मना कर दिया, भगवान ने आप क्या कर रहे हैं, हम दोनों एक ही काम करने वाले हैं, एक दूसरे लेना जाना क्या हुआ, आज मैंने आपकी सहायता किया, कल आप मेरी सहायता कर देना। भगवान राम बोलते हो क्या बात कर रहे हो, हम दोनों का एक ही काम है, ये कैसे हो सकता है। केवट बोले मैं आपको नदी के पार उतारता हूं, आप मुझे भव सागर से पार उतार देना। मैं तो केवल नदी पार करा रहा हूं, आप मुझे भव सागर को पार करा देना, मुझे संसार को पार करा देना, मेरा दोबारा जन्म ही ना हो, इस संसार को पार करा देना। आदि शंकराचार्य जी ने क्या बोला, पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरणम पुनर्पि जठरी जैने न्यानम इया संतारे बहुत तारे पाई मुरारे कृपा पारे, या कृपा पारे पाई मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माता की कोख में लेटना, इस संसार को पार करना बहुत दुस्तर है, बहुत कठिन है। अगर मुरारी की कृपा हो जाए, भगवान कृष्ण की कृपा हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए तो हो सकता है। पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जनरी जठरे शयनम इया संसारे बहुत तारे कृपा पारे पाही मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माता की कोख में लेटना, अगर संसार को पार करना है तो भगवान की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए तो आपको अपने गुरु के चरणों में जाना होगा। मन से भरोजे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर चरणम। हे मन गुरु के चरणों को भज ले, हम कहते हैं कमल चरण। कमल क्या होता है, कमल कीचड़ में लगता है, तालाब में लगता है, लेकिन तालाब से बाहर निकल आता है, वहां के फूल जाता है, उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर रिमेन्स ऑन द लोटस फ्लावर। कमल की भांति जो कीचड़ से बाहर निकल आता है, अर्थात संसार में रहते हुए भी संसार उसके भीतर नहीं आता। हम संसार में रहें लेकिन संसार की माया को अपने भीतर ना आने दें, अपने लक्ष्य को ना भूलें, अपने फोकस को ना भूलें। हे गुरुवर मेरी उंगली को थाम लो, मुझे कमल की भांति संसार से बाहर निकालो, संसार में रहूं लेकिन संसार में डूबूं नहीं, संसार को अपने भीतर नहीं आने दूं। मन से भजो रे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम। आप भव सागर से तारने वाले हैं, पार कराने वाले हैं। भगवान बाबा का पहला सर्वप्रथम भजन, सर्वप्रथम द वेरी फर्स्ट सॉन्ग written, composed and compiled and sang or sung by Bhagwan Baba. Likha bhi unhone, dhun bhi unhone banayi, gaya bhi unhone, ek sandesh dene ke liye jo aapke jeevan ka aadhar ban sakta hai. Vichar karna hoga. आप गुरु किसको मानते हैं? प्रश्न यह है कि हम किसको गुरु मानकर चले। हजारों गुरु आते हैं, मंदिरों में आते हैं, आप देखते हैं जगह जगह चर्चाएं होती हैं, फिर बाद में पता लगता है वो गुरु ऐसे थे वैसे थे, आपका विश्वास उठ जाता है। हु इज द गुरु, हु इज द ट्रू गुरु, हु इज द सदगुरु। कोई कहते हैं गुरु मान्यो ग्रंथ, ग्रंथ को गुरु मान लो, आप रामायण को गुरु मान लो, गीता को गुरु मान लो, गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान लो, बाइबल को गुरु मान लो, कुरान को गुरु मान लो। अब प्रश्न ये है, आप कहीं पर हैं, आपके कोई समस्या सामने आ गई, उसका उत्तर चाहिए। अगर गुरु वहां पर नहीं है तो आप अगर रामायण को गुरु मानते हैं, रामायण खोली आपने, रामायण में से उत्तर खोज लिया, उसके आधार पर आपने आगे अपनी जीवन को चलाई, जीवन चलाया। आपके प्रश्न आपके समस्या का हल आपको रामायण से मिल गया, हो सकता है। आप गीता को मानते हैं, कोई समस्या है? आपने भगवत गीता को खोला, उनके श्लोकों को पढ़ा, उनका मनन किया, अध्ययन किया, आपको समझ आ गया, आपको रास्ता मिल गया। इसी प्रकार से कुरान में, बाइबल में और अन्य धार्मिक ग्रंथों को आपने पढ़ा, आपको रास्ते मिलते गए। लेकिन मान लीजिए कुछ समस्या है, लेकिन आपके सामने का पुस्तक है ही नहीं, आपको याद ही नहीं आ रहा कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कौन से श्लोक को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी स्टेटमेंट पढ़नी है, तब हम क्या करेंगे? और गुरु वहां को अवेलेबल नहीं है, गुरु इज नॉट अवेलेबल, ही इज नॉट ऑनलाइन, फोन पे बात नहीं करते थे, कंप्यूटर से द्वारा बात नहीं करते थे, ईमेल नहीं भेजते थे, व्हाट्सएप नहीं भेजते थे, फेसबुक पर नहीं जा सकते, प्रत्यक्ष बात नहीं कर सकते, तो व्हाट टू डू? गुरु भगवान बाबा के शब्द याद आ गए, आध्यात्मिकता क्या है? Spirituality is having courage and determination to listen to the inner voice and walking on it at all times. आध्यात्मिकता का अर्थ है आपके अंदर साहस हो, courage and determination, दृढ़ता हो, साहस तो दृढ़ता हो कि आप अपने अंतर की वाणी को सुनकर उस पर चल सके at all time, हर वक्त। What a beautiful statement. आप अपने अंतर में गुरु को खोजें, अपनी आत्मा से बात करें, आत्मा ही आपकी गुरु है, आत्मा राम आपके गुरु हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इनर कॉन्शियसनेस, वो अलग बात है, जब अंतर से बात करेंगे बीच में मन भी आएगा, बीच में वासनाएं भी आएंगी, लेकिन प्रयास करने से, बारंबार कोशिश करने से, उस बताए हुए रास्ते में चलने से धीरे धीरे आप जान जाएंगे कौन सी आवाज मन की है, कौन सी आवाज बुद्धि की है, कौन सी आवाज आत्मा की है। एक मन बोलता है ये कर ले, दूसरा मन बोलता है ये मत कर। कभी आप मनन करें, कॉन्टेम्पलेट करें, अपने आप से बात करें, एक मन बोलेगा डू दिस, दूसरा बोलेगा डोंट डू दिस, दोनों मन या मन के दो अंश मान लीजिए, मन के दो पार्ट मान लीजिए, दोनों आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं, लेकिन कोई तीसरा तो है जो देख रहा है, बता रहा है कि दिस टू आर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, कोई तीसरा तो वहां पर उपस्थित है जो बता रहा है कि मन आपस में, दो मन आपस में लड़ रहे हैं, बुद्धि और मन आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। हु इज द थर्ड बॉडी, हु इज द थर्ड पार्टी, तीसरा व्यक्ति कौन है? वह साक्षी भाव, वो है आत्मा, दैट इज इनर कॉन्शियसनेस, उसी को भगवान बोला जाता है। मनस भजोरे गुरु चरणम दूस्तर भव सागर तरणम, हे मनुष्य गुरु के चरणों को भजले वह तेरे को भव सागर से पार करा देंगे। गुरु के चरण कहीं बाहर नहीं है, गुरु के चरण, गुरु स्वयं आपके भीतर आपके आत्मा के रूप में उपस्थित है। ऑल यू हैव टू डू इज लिसन टू हिम, और जैसे बारंबार अंतर की वाणी को सुनते जाएंगे क्लैरिटी आती जाएगी, रास्ता साफ होता जाएगा, आपको एक क्षण के अंदर पता लग जाएगा ये आत्मा की आवाज है, आत्मा मेरे को एक डायरेक्शन दे रही है, आत्मा मेरे को दिशा बता रही है, आत्मा मुझे बता रही है मुझे क्या करना चाहिए, आत्मा मुझे संदेश दे रही है, आत्मा मुझे आदेश दे रही है, आत्मा मुझे आशीर्वाद दे रही है, आत्मा मेरी उंगली को पकड़कर, आत्मा मेरी उंगली को पकड़कर मुझे भवसागर से पार लेके जा रही है। मनस भजोरे गुरु चरणम दुस्तर भवसागर तरणम।